अध्याय 16 दरिद्रता तथा दुख संकट की ओर मसीह का दृष्टिकोण। आज परमेश्वर मनुष्यों को मौका देता है कि देखें वे अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं अथवा नहीं। जो सचमुच में परमेश्वर को और अपने पड़ोसी को प्यार करता है वही कंगाल, दुखी, घायल पर अर्थात उन पर जो मरने वाले हैं दया करता है। परमेश्वर प्रत्येक को चेता कर कहता है कि उपेक्षित कार्य को संभालो, सृजनहार की नैतिक मूर्ति को मानव में पुंजीवित करो। परमेश्वर के कार्य में परिश्रम, आत्मत्याग तथा आत्मबलिदान की आवश्यकता पड़ती है, परंतु हमारा ये तनिक सा बलिदान उस बलिदान के मुकाबले में क्या है जिसे परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दान द्वारा किया है। अनंत जीवन के वारिस होने की शर्तें हमारे प्रभु द्वारा सरल भाषा में स्पष्ट रूप में दर्शाई है। जो मनुष्य डाकुओं द्वारा लूटा और घायल किया गया था वह लूका 10 आयत 30 से 36 उन लोगों का प्रतिरूपक है जो हमारी दिलचस्पी, सहानुभूति तथा प्रेम का विषय हैं। यदि हम ध्यान में लाए गए जरूरतमंदों तथा अभागियों की करुण परिस्थितियों की उपेक्षा करें, चाहे वे कोई क्यों न हो, तो हमें अनंत जीवन प्राप्ति का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, क्योंकि हम परमेश्वर की मांगों को पूरा नहीं करते हैं। हम मानव पर दयाशील व करुणाशील इसलिए नहीं होते कि वे हमारे गोत्री भाई बंधु नहीं हैं। अब तो आप दूसरी बड़ी आज्ञा के उल्लंघन करने हार बन गए, जो अंतिम 6 आज्ञाओं का सार है। जो कोई एक ही बात में चूक जाए वो सारी बातों के दंड के योग्य हैं। जो अपने हृदयों को मानव की जरूरतों तथा दुखों की ओर नहीं खोलते वे परमेश्वर की उन मांगों की ओर भी नहीं खोलेंगे जिनका वर्णन व्यवस्था की पहली 4 आज्ञाओं में हुआ है। सांसारिकता का सिक्का हृदय और प्रेम के ऊपर जम चुका है, इसलिए परमेश्वर का आदर नहीं किया जाता व उसकी प्रधानता दी जाती है। उसके अंतकरण पर जिस प्रकार लोहे की कलम से चट्टान पर लिखने हैं लिख देना चाहिए कि जो दया, करुणा तथा धार्मिकता की अवज्ञा करता, जो गरीबों की अवहेलना करता है, जो दुखी मानव की आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है, जो दयालु तथा सुशील नहीं है, वो ऐसी चाल चल रहा है कि परमेश्वर भी उसके चाल चलन के विकास होने में सहयोग नहीं दे सकता। जब हम दूसरों के प्रति ऐसी कोमल सहानुभूति महसूस करते हैं कि हम अपना लाभ तथा प्राप्ति को उनकी जरूरतों को पूरा करने को दे देते हैं, तो मन और हृदय का विकास अधिक सरलता से हो जाता है। अपने ही लिए सब कुछ प्राप्त करने तथा उसे अपने ही पास रखने से आत्मा कंगाल होती है, परंतु मसीह के समस्त सद्गुण उन लोगों की ओर से स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उस कार्य को मसीह के ढंग पर करेंगे जिससे परमेश्वर ने उनके करने को नियुक्त किया है। त्राणकर्ता पदवी तथा जाति, सांसारिक मान तथा धन संपत्ति की अवज्ञा करता है। चरित्र तथा अभिप्राय की लगन, ये ही उनके सामने बड़ा सम्मान रखते हैं। वह न तो बलवानों का और न धनवानों का पक्षपात करता है। जीवित परमेश्वर का पुत्र पतित मानव के उत्थान के लिए पृथ्वी तक उतर आया। प्रतिज्ञाओं तथा आश्वासन पूर्ण वचनों द्वारा वो खोई हुई तथा नाश होने वाली आत्मा को बचाना चाहता है। परमेश्वर के दूत इस ताक में हैं कि देखें कि इसके शिष्यों में से कौन करुणा तथा सहानुभूति व्यवहार में लाएगा। वे इस बात को देखने की ताक में हैं कि परमेश्वर के लोगों में से कौन यीशु का सा प्रेम दिखलाएगा। परमेश्वर केवल आपकी दानशीलता ही की नहीं, किंतु आपके चेहरे के हसमुखपन, आपके आशापूर्ण वचनों और आपके दूसरों से हाथ मिलाने की मांग करता है। जब आप दुखी लोगों से मिलते हैं तो आप ऐसे पाएंगे जिनके हृदय से आशा कूच कर गई है, उनके पास आशा की किरण फिर से लाइए। ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें जीवन की रोटी की आवश्यकता है, उनको परमेश्वर के वचन से पढ़कर सुनाइए। जिन्हें आत्मिक रोग हुआ है, जिस तक किसी सांसारिक मलहम की पहुंच नहीं हो सकती अथवा न कोई हकीम चंगा कर सकता है, इन्हीं के लिए प्रार्थना कीजिए और उन्हें मसीह के पास लाइए। मंडली के गरीबों की ओर हमारा कर्तव्य।
दो प्रकार के गरीब हैं जो सदा हमारी सीमा के अंदर रहते हैं। प्रथम वे जो अपने को अपने स्वाधीन रीति रिवाज से अपने को बर्बाद कर दिए हैं और आज्ञा लंघन के कार्य में लगे रहते हैं,
और दूसरे वे जो सत्य की खातिर तंग परिस्थिति में पड़े हैं। हमको अपने पड़ोसी से अपनी भांति प्रेम करना चाहिए, तभी हम इन दोनों श्रेणियों के साथ कुशल बुद्धि के मार्गदर्शक व परामर्श के अधीन यथोचित व्यवहार कर सकेंगे। दूसरे वर्ग के गरीबों के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठता। जहां तक उनका लाभ हो, उनकी हर हालत में सहायता करनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग पापी संसार पर ये प्रत्यक्ष कर दें कि उसने उन्हें नाश होने के लिए नहीं छोड़ दिया। उनकी सहायता करने के लिए विशेष परिश्रम करना चाहिए, जो सत्य की खातिर अपने घरों से निकाल दिए गए हैं और कष्ट रहने पर विवश हैं। ऐसे दानी पुरुषों की अधिक जरूरत पड़ेगी, जो स्वार्थ का त्याग कर इन प्राणियों की सुधि लेंगे जिनको प्रभु प्यार करता है। परमेश्वर के लोगों के बीच पाए जाने वाले गरीबों को उनकी जरूरत के समय खाने पीने की सामग्री पहुंचाए बिना नहीं छोड़ना चाहिए। कोई मार्ग निकालना चाहिए जिससे उन्हें दैनिक भोजन मिल जाया करे। कुछ लोगों को तो काम करना सिखलाना पड़ेगा, जो कठिन परिश्रम करते हैं और अपने परिवारों के निर्वाह के लिए कोशिश करते हैं, ऐसे लोग विशेष सहायता के पात्र हैं। हमें ऐसे लोगों में दिलचस्पी लेनी चाहिए और उनके लिए नौकरी तलाश करने में सहायता करनी चाहिए। ऐसे लोग गरीब परिवारों की सहायता के लिए, जो परमेश्वर से प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, कोई दानकोश होना अवश्य है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनमें से कुछ किसी कारणवश गरीब हो जाते हैं। कुछ हैं जो बेपरवाह हैं, वे प्रबंध करना नहीं जानते। कुछ लोग जो बीमारी तथा दुर्भाग्य के कारण गरीब हो गए हैं। कारण कुछ भी हो, वे जरूरतमंद और उनकी मदद करना महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य। जहां कहीं मंडली स्थापित हो चुकी है, उसके सदस्यों को चाहिए कि जरूरतमंद विश्वासियों के लाभार्थ विश्वसनीय कार्य करें, परंतु उन्हें यहीं रुक नहीं जाना चाहिए। उन्हें दूसरों की सहायता बिना दीन धर्म पूछे करना चाहिए। ऐसे परिश्रम के फलस्वरूप कुछ लोग विशेष सामयिक सत्यों को ग्रहण करेंगे। जरूरतमंदों की किस प्रकार सहायता करें? जरूरतमंदों की मदद के ढंगों पर सावधानी तथा प्रार्थना के साथ विचार करना चाहिए। हमें इस देशों में परमेश्वर से बुद्धि की खोज करनी चाहिए, क्योंकि उसका ज्ञान अल्पदृष्टि नश्वर मानव से कहीं बढ़कर है, जो जानता है कि अपने पैदा किए हुए प्राणियों की किस प्रकार रक्षा करनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो हरेक को जो उनसे सहायता की प्रार्थना करता है अंधाधुंध दान देते हैं। इसमें वे भूल करते हैं। गरीब की सहायता करने में हमें जरा सावधान होना चाहिए कि उनकी यथोचित सहायता करें। ऐसे भी लोग हैं जिनकी एक बार मदद कर दी जाए तो ऐसा दिखाएंगे कि वे लगातार सहायता के विशेष पात्र बने रहें। वे सर्वदा उन्हीं का आश्रय लेंगे जब तक उन्हें मिलता रहेगा। इन पर समय तथा ध्यान को अनुचित रीति से प्रयोग करने से हम आलस्य, विवशता, अपव्ययता तथा असमता को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जब हम गरीबों को देते हैं तो हमें विचार करना चाहिए, क्या मैं अपव्ययता को तो प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूं? क्या मैं उनकी मदद कर रहा हूं अथवा उनको हानि पहुंचा रहा हूं? किसी भी मनुष्य को जो अपनी जीविका उपार्जन कर सकता है, किसी दूसरे पर आश्रय लेने का अधिकार नहीं। परमेश्वर के भक्तों को, अर्थात विवेकी व बुद्धिमान ज्ञानी पुरुषों, स्त्रियों को, जरूरतमंदों, विशेषकर विश्वासी भाइयों की देखरेख के लिए नियुक्त करना चाहिए। उन्हें मंडली को सूचित करना चाहिए और जो कुछ करना हो उसके विषय में विचार करना चाहिए। परमेश्वर ये मांग नहीं करता कि जितने गरीब परिवार इस संदेश को ग्रहण करेंगे, उन सब की देखरेख हमारे भाइयों को करनी पड़ेगी। यदि उन्हें ऐसा करना जरूरी है तो मंडली के अध्यक्षों को नए क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा कोष खाली हो जाएगा। अनेक अपनी मेहनत व मितव्ययता की कमी के कारण गरीब है। उनको पता नहीं कि रुपए पैसे का यथोचित प्रयोग कैसे करें। यदि उनकी मदद की जाए तो उनको हानि पहुंचेगी। कुछ लोग सर्वदा गरीब ही रहेंगे। यदि उनको अच्छे अच्छे मौके मिले तो भी उनकी सहायता नहीं हो सकती। उनका हिसाब किताब ठीक नहीं है और वे सारे रुपए पैसे को उड़ा डालेंगे, चाहे वह थोड़ा हो या अधिक।
जब इस प्रकार के लोग संदेश को ग्रहण करते हैं तो वे सोचते हैं कि अब वे अधिक धनवान भाइयों की मदद के हकदार हैं, और यदि उनकी आशाओं की पूर्ति न की जाए तो वे मंडली की शिकायत करते हैं और दोष लगाते हैं कि वो अपने धर्मानुसार नहीं चल रहा है। इस दशा में किसको नुकसान उठाना चाहिए? इन बड़े बड़े धरी परिवारों की देख रेख करने के लिए कोष को खाली कर परमेश्वर के काम को दुर्बल कर दिया जाए? नहीं, माता पिताओं को ही दुख भोगना चाहिए। सामान्य तौर पर उनको सब्बत के सत्य को ग्रहण करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर हर मंडली के सीमांतर्गत गरीबों को रहने देता है। वे हमेशा हमारे बीच में रहेंगे और प्रत्येक मंडली के सदस्य के ऊपर परमेश्वर उनकी देख रेख का दायित्व रखता है। हमको अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। जो हमारी सीमा के अंदर हैं, उनकी ओर वही प्यार और सहानुभूति दिखलानी चाहिए जैसा मसीह हमारे स्थान में होके दिखलाता। इस प्रकार हमारा शिक्षण होना चाहिए कि हम मसीह के ढंग पर काम करने को तैयार हो सकें। अनाथों की देखरेख। जिनकी जरूरतों की ओर हमारी अभिरुचि खींचनी चाहिए उनमें विधवा और अनाथ हैं, जो हमारी सहानुभूति के दावेदार हैं। वे परमेश्वर की विशेष देखरेख के पात्र हैं। वे परमेश्वर के लिए मसीही लोगों को धरोहर के रूप में सौंपे गए हैं। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुध लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। याकूब 2:27। बहुत से पिताओं जो धर्म में मर गए, परमेश्वर की अनंत प्रतिज्ञाओं पर आसरा रखकर अपने प्रिय जनों को पूर्ण भरोसे के साथ छोड़ गए कि परमेश्वर उनकी अवश्य रक्षा करेगा। तब परमेश्वर इन शोकाकुल प्राणियों की आवश्यकताओं को किस तरह पूर्ति करता है? वो स्वर्ग से मन्ना भेजने का आश्चर्य कर्म तो नहीं करता, न वो कवो द्वारा भोजन पहुंचाता है, परंतु वो मानव के हृदय में आश्चर्य कर्म कर डालता है। वो उसके हृदय से स्वार्थ को निकालकर उदारता से स्रोत खोल देता है। वो अपने इकरारी अनुयायियों की प्रीति की परीक्षा इस तरह करता है कि उनकी करुणा पर पीड़ितों व शोकातुरों को सौंप देता है। जिनके हृदय में परमेश्वर का प्रेम बसा है, इन अनाथ बालकों को अपने हृदयों में और घरों में जगह दें। बड़े बड़े अनाथालयों में अनाथों की देखरेख करने की योजना उत्तम नहीं है, तो कलीसिया के मेंबर या तो इनको लेपालक के रूप में अपने परिवार में ले लें, अथवा उनके लिए दूसरे परिवारों में योग्य स्थान तलाश कर दें। ये बालक ऐसे हैं जिनको मसीह विशेष रूप में देखता है, जिनकी अवहेलना करना पाप है। उन पर मसीह के नाम से प्रत्येक दया का कार्य ऐसा समझा जाता है मानो स्वयं।